أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایام ماہ مبارک، اگر کوئی چیز کی طرف ہماری توجہ مبذول نہیں کراتا تو سمجھ کر کس چیز کی طرف ضرور کراتا ہے کہ کوئی ایسی حقیقت ہے کہ جو بھوک کے ذریعے سے اور پیاس کے ذریعے سے انسان کے ایمان میں حاصل ہو سکتی ہے، اگر ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور یا شاید وہ دینوں کے ماننے ادیان کے ماننے والے ہیں کہ جو دین میں روزے کا تصور رکھتے ہیں، فاسٹنگ کا تصور رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو انسان کے لیے بھوک اور پیاس سے محرومیت کے نتیجے میں اس کے مرتبہ ایمانی کو ایک دوسرے درجے تک پہنچا سکتے ہیں. اس لیے یہ بات کو قرآن نے بھی جب پیش کیا کہ جیسے کہ گزشتہ قوموں پر بھی روزہ لکھ دیا گیا تھا، اسی طریقے سے تم پر بھی آج واجب کیا جا رہا ہے. قطب الذین من قبلکم کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جہاں کے اوپر آپ جب فضا سے اور دوسری چیزوں سے، پانی سے اور دوسری چیزیں جو عام طور پر حلال ہوتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو جب دور کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، قربت خدا کے لیے، تو یہ مہلت جو آپ کو ملتی ہے صبح سے لے کے شام تک، ابتدائے فجر سے وقت مغرب تک، یہ آپ کی روح کو ایک الگ مرحلے پر لے آتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو آخری 10 دن ہے ان کا جو زیادہ توجہ کے ساتھ رمضان میں منایا جانا تاکید روایتوں میں بھی ہے اور آیات قرآنی میں بھی ہے، وہ اسی عنوان سے ہے کہ ایک مرحلے کو آپ جب طے کر لیتے ہیں، جگہ تک پہنچ جاتے ہیں 20 روزوں کے لگ بھگ بعد، اس کے بعد کا مرحلہ وہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کی تشبیہ 1000 مہینوں کے برابر کہہ کر دی گئی ہے. شب قدر کی جو اہمیت ہے وہ 1000 مہینوں کی بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے اوپر جیسا انسان کا بدن کچھ قوانین پر چلتا ہے، آپ اگر اس بدن کو ان قوانین پر چلائیں تو اس کی گروتھ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، آپ یہ غذا کھائیں، غلط غذائیں نہ کھائیں، ایکسرسائز اس کی حد تک کریں تو آپ کی باڈی ایک خاص قسم کا شیپ لے لے گی. کوئی دوڑنے والا ہے اس کی ایکسرسائز الگ ہوتی ہے، کوئی فٹ بال کھیلنے والا ہوتا ہے اس کی ایکسرسائز الگ ہوتی ہے، کوئی کرکٹ کھیلنے والا ہوتا ہے اس کی ایکسرسائز الگ ہوتی ہے، ہر کی اپنی اپنی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خاص قسم کی غذا اور خاص قسم کی ایکسرسائز سے باڈی کو ایک خاص شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے. یہ ہو گیا ہمارا مادی اسٹرکچر، مادی فارم میں، میٹیریل فارم میں ہمارا یہ اسٹرکچر. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک روحی اسٹرکچر بھی ہے. ہم خالی مادہ نہیں ہیں، غیر کو آپ خالی کھانا کھلاتے رہیے یا منڈی میں بند کر اس کو چلائیے یا ہل جوتنے کے لیے اس کو کام میں لائیے، اس کی جو دنیا کی بدنی جو قوت ہے وہ وہی حساب سے رہیں گے. جتنا کھائے گا اتنی طاقت آئے گی، اس حساب سے وہ کام کرے گا. اس کی روحی ارتقا کے لیے، اس کی ایمانی ارتقا کے لیے کوئی کام کیا نہیں جا سکتا. اس کو کھلایا جا سکتا ہے، اس سے کام لیا جا سکتا ہے، گائے کو کھلایا جا سکتا ہے، اس سے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ سب اپنی جگہ، یہ ہم آپ بھی آ کے رہ گئے ہیں کہ جس کے بارے میں ایک دوسرا چیپٹر کھولا جائے کہ جہاں کے اوپر ہماری جس طریقے سے بدنی گروتھ ہے تو بدن کو محروم کیا جا رہا ہے، روح کو بلند کیا جا رہا ہے. یہ جو ریلیشن شپ روح کی اور بدن کی ہے، یہ اسلام نے کس لمبی مدت کے لیے، 1 مہینے کے لیے اس بنیاد پر تاکید کی ہے کہ بدن کی قوت کو کم کرو، ایمانی قوت کو زیادہ کرنے کا طریقہ ہم نے بتایا. یہ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو شاید ہم نے جو سوالات سے گفتگو شروع کی ہے ان سوالات میں سے اکثر سوالات کا حل مل جائے گا. پہلی ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اسی فطرت پر خلق کیا، فطرت اللہ کی فطر الناس علیہا، ہم نے تمام انسان کو اللہ کی فطرت پر، اللہ کے طریقے پر خلق کیا. جب ہر انسان کو ذات پاک، درجہ گورا کالا، کسی کی گفتگو اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں رہا ہے، صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی فطرت پر تمام انسانوں کو بنایا. جب انسان تمام اس کی فطرت پر بنے ہیں تو ان کے گروتھ کا بھی پروسیس ایک جیسا ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسا گزشتہ قوموں کو کہا گیا تھا کہ روزہ رکھو، اسی طریقے سے تم کو بھی کہا جا رہا ہے، تاکہ جس طریقے سے بدن کا اہتمام کرتے ہو اس طریقے سے اس مہینے میں کم از کم روح کا اہتمام کرو، بدن کے اہتمام کو سیکنڈ لیول پر ڈال دو. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کیونکہ الٹی ہوئی ہے، رمضان بھی اسی طریقے سے الٹا ہونے لگا. ये रूह का तो हिसाब है ही नहीं, क्योंकि रूह है किसकी? रूह है किसकी? जब तक हमको अपनी रूह का एहसास होगा नहीं, हम उसका इलाज मुआवजा करने वाले भी नहीं है। हमने कहा कि हमको अल्लाह ने एक नाजुक बैल की जैसे बना दिया, ज्यादा उतनी खाते हैं, काम अगर अलग करते हैं, जानवरों जैसा खाते हैं, जबकि कुरान की आयत के मुताबिक अल्लज़ीना कफ़रू याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, वो लोग जो कुफ्र इख्तियार करते हैं वो ऐसे खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं, चौपाए खाते हैं। तो हमने ये कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना तो अल्लाह ने साबित कर दिया कि हम चौपायों जैसा खा तो सकते हैं। आयत से ये जरूर नतीजा निकल गया कि हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह चौपायों के जैसी खाने की कुदरत तो बराबर है, ठीक है। और अल्लाह ने शुरू से कह दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, तो रहमतों का जब सिलसिला है तो यकीनन वो खाने में भी आ गया है। तो अल्लाह की रहमत से हमको खाने को मिला है, और अल्लाह ने खुद कहा है कि तुम अगर चाहो तो बिल्कुल जानवरों जैसा खा सकते हो। तो ये दो चीजें रहमान की है और रहीम की है कि खाने के बाद के नतीजे वो खुद देगा। रहमान इसलिए कि हमको खाना खिलाएगा, रहीम इसलिए है कि उसके जो गलत नतीजे निकलेंगे उसका भी वो गुफरान के जरिए से, बख्शाइश के जरिए से उसका भी लिहाज रख लेगा। तो रह क्या गया, चाहे वो रमजान हो या कोई और चीज, खाने के लिए जरूर इंतजाम कर लेना चाहिए, क्योंकि रूह है या नहीं है उसको मालूम है। उसने पूछा था कि नफा तो पी है मेरे रूही, मैं जब उसमें अपनी रूह फूंक दूंगा तो तुम उसके सामने सजदरेज हो जाना। ये परिंदों से दरखास्त की अल्लाह की, ये हुक्म था अल्लाह का कि जब मैं उसमें रूह फूंकूंगा, हमको क्या मालूम हमें कब रूह फूकी गई, हमको क्या मालूम, वो तो परिंदों को भी बराबर मालूम नहीं हुआ, उनको भी डाउट होने लगा कि भैया फूकने के बाद फूकना चाहिए या नहीं फूकना चाहिए, कुछ सवाल कुछ जवाब। हमको जो जिसके ऊपर रूह फूकी गई थी हमको तो एहसास भी नहीं हुआ, और वो एहसास नहीं होने की पहली दलील हमने खुदा के हुक्म की मुखालफत करते हुए, शैतान की बात सुनते हुए उस दरख्त कुर्बत हम करीब हो गए कि जिससे अल्लाह ने रोक दिया था। उसका मतलब यह है कि हमने कभी भी इब्तिदा से ही रूह को दर्द करने और उसका एहसास करने में कासिर रहे, और शैतान की बात हमको बात अल्लाह की बात से हमेशा ज्यादा समझ में आई। तो अगर हमको ये मौका काफिरों जैसे खाने का मिल रहा हो तो वैसे मौके को छोड़ देना ये ऐने कुफरा में नेमत होगा, और रहा कि मुंह की परवाह अल्लाह ताला को खुद को करनी है हमको करनी नहीं है। बाल बड़ी मंदिर है, आया थे कुरानी से हमने अपने रमजान के खाने का इंतजाम तो कर दिया। अब क्या रह गया, वो रूह कि जिसके बारे में अल्लाह ने हमारे शरफ को उसी से जोड़ा, इंसान को बनाया, रूह फूटने से पहले सज्जे का दरखास्त नहीं की, हुक्म नहीं दिया, रूह फूकने के बाद कहा कि उसके बाद खिलकत इंसानी की भी जो आयतें पुरानी हमको मिलती है, मुख्तलिफ हालात में इंसानी पैदर को बदलते हुए पेश करता है, और उसके बाद कहता है कि फिर रूह फूकी गई और उसको हमने और ही खिलकत बना दिया, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, और बाबरकत है वो अल्लाह की जात जो बेहतरीन काम करने वाला है। तो ये सब चीजें एक तरफ, पेट की भूख और पेट की आहट, जबान का मजा एक तरफ, आकर आज के दौर में अगर हम देखें तो रमजान अपनी दूसरी कैफियत के लिए कम और अपनी पहली कैफियत के लिए ज्यादा मालूम। पेट भरना हमको सबको आता है, भूख को आगे लेकर जाना हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि पेट भरने वाली कैफियत जानवरों जैसी। कौन सा जानवर आप बता दीजिए कि जिसको आपको सिखाना पड़ता है, बच्चा पैदा होता है माँ की छाती से दूध पीता है या नहीं पीता है? हर वो जानवर जिसको अल्लाह ने ताकत दी अपनी गजा की खुद खोज करने की कोशिश करता है या नहीं करता है, चाहे वो हिस्से के साथ और इनके साथ हो या फितरत की बुनियाद पर है या नहीं है। लेकिन हर जब इंसान में गजा खाने और गजा तलब करने की ख्वाहिश और जायका देने की ख्वाहिश होती है, तो क्या हर इंसान में अल्लाह की तरफ रगबत करने की भी वैसी कैफियत हो सकती है या वैसी हो नहीं सकती? पूरी पूरी गुफ्तगू इसी के अतराफ कि इंसान अपने पैकरे मादी से हटकर कुछ और भी अपने आप को समझता है या नहीं समझता है, पहला सवाल। दूसरा, कितनी देर तक समझ सकता है, तवज्जो का मोहताज। एक पहले कि मैं किस हद तक अपने आप को बदनी फकत समझूं या नहीं तो रूही भी हूं समझूं, और फिर कब तक मैं इस कैफियत को अपने लिए एक दायमी कैफियत बनाने के काबिल समझता हूं या नहीं समझता हूं। कुरान की आयत है जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है ये लोग अल्लाह की इबादत बिल्कुल किनारे पर करते हैं, बिल्कुल किनारे पर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से कबड्डी खेल रहे हैं यूं जहां तक है भी वापस आकर अपनी कैफियत में आ गए कि ताकि कोई माल की नुकसान के बगैर अगर अल्लाह की इबादत हो जाए, अगर कोई माल की नुकसान के बगैर अल्लाह की इबादत हो जाए तो ये कैसी जबरदस्त नफरानी हो जाएगी। रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत का गई, दुनिया में जो चाह कर लिया, अल्लाह से भी हाय भाई का रिश्ता बाकी रहा। कल ऐसा ना हो कि कियामत के दिन अगर बात बोले कि अल्लाह ताला के सामने जाना है तो मुझे, हम तो पहले से जानते हैं मुलाकात है बातचीत हो चुकी है, कोई वो कैसे तो मेरे पेट भर के खाने के बाद जब डकार नहीं आती तो अल्लाह को पुकार लेते, आ जाती तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते, क्योंकि अगर डकार नहीं आती तो कैफियत ऐसी होती थी कि ऊपर का दम ऊपर और नीचे का नीचे तो अल्लाह याद आ जाता था तो अल्लाह को पुकार लेते, डकार आ भी जाती थी तब भी अल्लाह को पुकार लेते अल्हम्दुलिल्लाह कहते, तो अल्लाह का हमारा रिश्ता हमारे पेट से जुड़ा रहा, हमने कभी वो रिश्ता टूटने नहीं दिया। अब भी अब अल्लाह जब आएगा तो कुछ अच्छा खिलाने के लिए बुला रहा होगा। तो इंसान का जहन जो है होते 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 इतना मादी होने लगता है कि वो हमेशा ये समझता है हर चीज मादे से जुड़ी, मेरी कामयाबी मादे से जुड़ी, मेरी शिकल मेरे मादे, मेरी इज्जत मेरे मादे। एक एक आयत आप कुरान की ले जाइए इसको रिप्यूट करती है, इसको इनकार कर, मादा कोई चीज नहीं, इतनी बड़ी कायनात बनाने वाले के वास्ते हम जैसे इंसान का पेट भरना या नहीं भरना क्या माना रखता है या नहीं, हम जैसे का पेट भरना या नहीं भरना क्या माना रखता है। हजारों लाखों पैदा होते हैं और हजारों लाखों रोज मरते हैं, फिर वो क्या चीज थी जिसको लिए हमको उस जैसा, फिर वो क्या चीज किसके लिए हमको सर्व किया, वो क्या चीज थी जिसके लिए उसने अंबिया को भेजा, वो क्या चीज, और वो चीज क्या हमारे में है या नहीं, फकत अल्लाह को पुकार में और अल्लाह तक की इब्तदाई आशनाई तक बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से मैंने कहा कि हम अगर कोई एक्सरसाइज करने वाले को देखते हैं कि जिस भी फील्ड का वो माहिर है उसमें वो उस शक्ल की एक्सरसाइज करेगा और उसके मुताबिक उसकी बदन की ग्रोथ होगी और उसी हिसाब से उसके पास वो स्टेमिना आ जाएगा। ये एक 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 छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज उसमें असर रखती है, थोड़ी सजा हो जाए उसके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगा, थोड़ी कम एक्सरसाइज हो जाएगा तो भी का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये चीज जिसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, सबब और मुसब्बब, ये मार्ग की दुनिया में दिन रात हम देखते हैं और उस पर यकीन रखते हैं, रखते नहीं रखते। अगर मैं सीढ़ियां उतर रहा हूं और मैं कहूं मैं सीढ़ी उतर रहा था लेकिन मैं सेकंड फ्लोर पहुंच गया, आप क्या कहेंगे, इलाज की जरूरत बहुत ज्यादा है, आप कभी सेकंड फ्लोर पर मिल जाइए, सीढ़ियां उतरते वक्त जमीन पे आएंगे आप, अगर आप ठीक हो गए आपका दिमाग, अगर नहीं ठीक हुआ तो छठ फ्लोर तक पहुंच जाएंगे और हो सकता अल्लाह का और ऊपर, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको इस बात का यकीन है कि आप अगर सीढ़ी नीचे उतर रहे थे तो आप ऊपर पहुंचने वाले नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, आगे चलते जा रहे हैं पीछे पहुंच गए। ये जवानी में इतने जवानी में हो सकता है घर को अपने जाना चाह रहे थे कहीं और पहुंच गए, उबुल गलत बोल दिया हूं, आगे आगे बढ़ रहे थे जा रहे थे अपने घर को पहुंच गए किसी और जगह पर, इब्तदाई जवानी तक उबुल, उसके बाद अभी तो उबुल नहीं है, अल्लाह ने भी कुछ जगह पर छूट दे दिए, बाकी जगह तो कानून काम करेंगे है या नहीं है। हर वो चीज जो आप चाह रहे हैं, जेब में आप अपने कुछ चीज रखना चाह रहे हैं दूसरे के जेब में हाथ चला गया, हो सकता है नहीं हो सकता, मगर देखिए कोई आदमी बिल्कुल ही खरीद पड़ा हो और आप जानने की कोशिश कर रहे हो बल्कि उसका जेब भी वहीं पर, वरना कोई पिकपॉकेट को आप ले गए कि वो कहेंगे कि मैं अपने जेब में डाल रहा था आपके जेब में चले गया, मानेंगे नहीं मानेंगे, मस्जिद में अगर भी होगा तो नहीं मानेंगे क्योंकि ज्यादातर वहां पर ही चोरी होती है। तो आप जब हर चीज का एक पॉजिटिव इफेक्ट देख रहे हैं, एक सबब और उसका मुसब्बब, एक इल्लत उसका नतीजा, तो जब ये सब दुनिया के मार्ग की चीजों में सीधे पैर की चप्पल बाएं पैर में गलती से पहन सकते हैं, तवज्जो के साथ नहीं पहनेंगे, आइए रूप के ऊपर, रूप पर भी यही किस्म की चीज कारामद है, यही तरीका रूह पर भी लागू होता है। रूह की आप एक्सरसाइज छोड़िए, रूह जिंदगी हो जाएगी। सही एक्सरसाइज कीजिए, सर्वदाता हो जाएगी। एक्सरसाइज के कुछ जो तरीके हैं उसके नतायज भी बराबर मुरतब होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ताकतवर रूह एक कमजोर रूह बन जाए और एक कमजोर रूह बगैर कोई सबक के एक ताकतवर रूह बन जाए, क्योंकि हमने हाथ पर तावीज बांध ली। तावीज आमतौर पर उनको मानी जाती है कि जिसकी रूह कुछ ग्रो नहीं हो सकती, इसलिए जो है हमको देखा जाता है कि कुछ जगह किस किस्म के लोगों को तावीज दी गई है जिनके पास रूह ही नहीं, जिनके पास रूह की का तस्वूर ही नहीं था। छोटा बच्चा उसको अभी रूह का अंदाजा नहीं है, उसको आप तावीज बांध, मगर शौर रखने वाले को अगर वो रूह के मुकाबले में अमल कर रहा है कोई तावीज बांध नहीं, कोई कुछ असर होने वाला नहीं। जहां पर असर होने की बात है, जब आपको शौर आ गया है वही वाली बात है, नीचे उतर रहा हूं तो ऊपर पहुंचने वाला नहीं। यही चीजें हैं जिसकी तरफ रमजान, यही चीजें जिसकी तरफ शबे कद, यही चीजें हैं जिसकी तरफ कुरान रसूल सभी दावत है। आपको रूह के लॉज को समझने की इतनी सलाहियत हो जाए कि आपको हमको इतना मालूम हो कि जिस तरीके से एक अगर हम तवज्जो के बगैर लफ्जिश करते हैं और ठोकर लग सकती है, तो उतनी ही ज्यादा उससे 100 मरतबा ज्यादा, उससे 1000 मरतबा ज्यादा लफ्जिश करने पर रूह को भी ठोकर लगती है। ये ऐसा नहीं है कि अगर रूह एक रात में 1000 महीनों की तरक्की कर सकती हो तो एक रात में 1000 महीनों की ना दबाव ना कर सकती हो। जब चढ़ने के लिए वही है तो उसका उल्टा भी असर मुरतब होगा, उसके नतायज निकलने वाले हैं। अगर हमको इस पर यकीन नहीं है, हमारे गुनाह हमको सबक नहीं सिखा, गुनाह का नतीजा क्या होगा? बहुत ज्यादा खाने का नतीजा कभी कभी मालूम हो जाता है, खून बहुत ज्यादा खाने का कभी नतीजा मालूम हो जाता है, लेकिन रूह के नुकसान का नतीजा जब तक के तवज्जो न की जाए मालूम नहीं होता। रूह जवान की तरफ जा रही है या तरक्की की तरफ, वो जब तक के खुदाई रास्ते को कर इस बात पर यकीन नहीं कर लिया जाएगा कि तेरा वो रास्ता जो तूने हमारे लिए बनाया था और जिसके लिए तूने हमें खल्क किया और अपने आप को बेहतरीन खालिक का उन्वान और किताब दिया, वो इसलिए है कि हमारी रूह का सफर हम शुरू कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे बदन का सफर हम उस तरीके से कि जैसे जानवर खाते हैं खाकर आगे बढ़ाते हैं। ये वक्त का एहसास इंसान की ईमानी जिंदगी की इब्तिदा है, ये वक्त का एहसास इंसान की ईमानी जिंदगी की इब्तिदा है। वहीं पर ईमान शुरू होता है जहाँ पर इंसान को यकीन हो जाता है कि जैसे बदन के लॉज हैं, जैसे बदन के कवानीन हैं, वैसे ही मेरे रूह के कवानीन हैं और उससे ज्यादा बारीक हैं, उससे ज्यादा बारीक है। हिसाब किताब कोई छोटी चीज भी कुरान की आयत में तफसील में नहीं जाता कि किताब को क्या हो गया, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, कोई चीज को इससे छोड़ा ही नहीं है। इसलिए नहीं छोड़ा है कि छोटे का भी असर रूह के रास्ते पे बड़ा होता है, छोटे का भी असर रूह के रास्ते पर बड़ा होता है। इसलिए हमको कभी कभी हदीसों में नजर आता है कि गुनाह को छोटा मत समझो, क्योंकि हर गुनाह बड़ा है। इसलिए मुखालिफत खुदा होंगे, कोई भी खुदा की मुखालिफत खुदा की मुखालिफत होने के नाते छोटी नहीं हो सकती। असर के नतीजे में आप उसको सगीरा या कबीरा बोल सकते, छोटी गलती हो जाए जिसमें दूसरों पर ज्यादा असर ना हो, हमको ज्यादा असर ना हो, उसका नतीजे में हम उसको सगीरा कहेंगे। कबीरा इसको हम कहेंगे कि जब उसका असर हम पर या किसी और पर बहुत ज्यादा होता, लेकिन मुखालफत इलाही की बुनियाद पर वो तो कबीरा ही बड़ी गुना बड़ा है। और अगर हम ये रातों को समझने लगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हम अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, अगर हमारी लालच अगर बदल बढ़ जाती तो क्या है, अगर हमारी सिक्योरिटी के अगर लेवल हम माजी तौर पे अपने बढ़ाना चाहेंगे तो हमारा क्या नतीजा निकलेगा, और किस हद तक हम अल्लाह पर तवक्कुल करें हमारी हर सांस के लिए, हमारी हर ग्रोथ के लिए। यहाँ पर वो पुरानी आयत शुरू होती है कि जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, यानी उसको पता चल गया है रूह को कि अगर मैं नमाज में आगे पीछे करा तो मुझे वो नतीजा जो मैं एक नमाज में हासिल करूंगा वो नतीजा हासिल होने वाला नहीं है। जिस तरीके से एक एक्सरसाइज करने वाला एथलीट एक खेलने वाला खिलाड़ी जानता है कि अगर मैं ये सिस्टम को अगर सही तरीके से नहीं बजा लाऊंगा तो बजाय इसके कि मेरी कमर मजबूत हो जाए मुझे दर्दे फिकर या दर्द कमर शुरू हो जाएगा। उस बारीकी के साथ अगर वो जिस बदनी चीज की तरफ तवज्जो करता है इंसान को अगर एहसास हो जाए कि मेरी नमाज मेरी गजा है मेरा सबसे अच्छा अमल है। खैरुल अमल का मतलब ही क्या हो सबसे अच्छा अमल का मतलब क्या कुरान की आयत के मुताबिक जिक्रुल्लाह अकबर अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गजा और पानी और इसकी बात अल्लाह ने कुरान में नहीं कही ये भी बहुत बड़ी चीज है तो ताकि हमारी नजर उधर चले जाती और इधर की तरफ ना आती। जिक्रुल्लाह अकबर अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है किसके लिए हमारे लिए अल्लाह के लिए हमारे लिए क्योंकि हम नहीं बाकी रहेंगे अगर हम उस जिक्र को बाकी नहीं जब हम बाकी नहीं रहेंगे तो सबसे बड़ी चीज हुई या नहीं हुई। जब हम अगर जिक्र सही नहीं करेंगे तो हम बाकी नहीं रह जाएंगे किसी और शक्ल के जानवर में हमारी तब्दीली हो जाएगी। जाहिरी तौर पर आईना उस तब्दीली की तरफ निशानदेही नहीं करेगा जाहिरी तौर पर आईना उस तब्दीली की तरफ इशारा नहीं करेगा लेकिन हमारी रूह पूरी तरीके से बस पूरी होगी क्योंकि हमको अच्छाई और बुराई में हमारी ख्वाहिश के साथ अच्छाई और बुराई को लेबल करने का शौक और सलीका आ जाएगा। मैं दो घंटे पहले टेलीविजन देख रहा था अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं वो लोग उसी एन में बयान दे रहे थे कि इसराइल पर हमला कर दिया गया लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने इसराइल इज अंडर सीज उन्होंने ये अल्पाज इस्तेमाल किए कि इसराइल इज अंडर सीज यानी अगर बाहर से सोचने वाला अगर देखे तो इसराइल पर हमला तरीके से बड़े तरीके पर कर दिया गया है। पता चला कि क्या हुआ तो कहा कि दो सिविलियन मर गए 12 दिन में और यहाँ के ऊपर 2000 से ज्यादा जख्मी और 300 से ज्यादा अमवात ठीक मगर गुफ्तगु क्या हो रही है बड़ी जगह उनका बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो इतने बड़े पोस्ट पर था कुछ साल पहले प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा आ गया लेकिन फिर आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नंबर 2 पोजीशन होता है अमेरिका में ठीक है वो ये कह रहा है तो अगर सुनने वाला जिसको पूरी खबर नहीं पता तो क्या पता चलेगा गजा में रहने वाले कुछ बाशिंदे इसराइल पर हमला बोल दिया ये कैसे हो गया पढ़े लिखे लोग इस गुफ्तगु क्यों करते और हम लोगों को इतना पता जब इंसान अपनी दुनिया को अपनी आखिरत को अपने बदन को अपनी रूह से ज्यादा अहमियत देने लगेगा तो वो सच समझकर जो कहेगा वो झूठ होगा। कुरान की इब्तदाई आयतों में सूरह बकरा की इब्तदाई आयतों में है कि जब इसे कहा जाता है तो फितना मत करो फसाद मत करो ये कहते हैं कि हम सिवाय सुलह और सुलह के कुछ भी नहीं करते। इंसान कैसा हो गया ये रूह की कमजोरी और भूख को अंधेरा करने का वरना ये आप याद रखिए कि जो बात कही जा रही है ये सीरियसली लाखों करोड़ों लोगों को सुनने के लिए की जा रही है तो कमरे में बैठकर नहीं की जा रही है और कोई आदमी 2 जमा 2 5 बोलना पसंद नहीं करता आखिर आदमी 2 जमा 2 5 बोलना पसंद नहीं करता। तो जब एक शख्स पढ़ा लिखा जानने वाला इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठा हुआ जिसकी पैसे बड़े हिस्से पर दुनिया के असर करते हैं वो अगर ये बात कहे और नतीजतन इसराइल को दिफाकत किया हमको आपको क्या समझ में आता है ये समझ में आता है कि ये इस वक्त की जो दुनिया एक तरफ इस किस्म के लोग हैं कि जिन्होंने रूह का सबक पढ़ाई जिस तरीके से 2 1 2 2 4 वाला सबक इब्तदा पढ़ाया जाता है लोगों को वो सबक पढ़ाया नहीं गया है वो उनके मरहले पर है। आइए अपनी जिंदगी के ऊपर हम अपनी जिंदगी में कितनी इतनी ही होंगी बातें करते हैं बिल्कुल ऐसे महसूस करते हुए कि हम सच्ची बात करते हैं। अमेरिका से जाने की जरूरत नहीं हम अपनी जिंदगी में भी गया करते हैं, हम भी ऐसी आंधी बातें करने के आदि हो गए हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं। क्यों? कि अल्लाह ने हमको मखसूस तौर पे चुन लिया। कहां पर चुना? वो चुन लिया हमको नहीं मालूम, और चुनने का यह नतीजा हम कभी खराब आलू टमाटे घर ला सकते हैं, सड़ा हुआ मौत घर ला सकते हैं, अल्लाह ऐसे नहीं चुनता। अल्लाह जिनको चुनता है पैगंबरों को भी आत्मा के चुनता है। इब्राहिम और अबूबे का हमने जब कई बातों में इब्राहिम को आत्मा लिया, कई बातों में आत्मा लिया और उन्होंने उसे तमाम किया, तब अल्लाह ने कहा कि इन्हीं जाहिरों का लिनाश है मामा। तो इब्राहिम को भी दुनिया में आजमाने के बाद इमाम का किताब मिला, तो हम कैसे चुन लिए गए मुझे समझ में नहीं आता। गफलत हमारी, हम जानते हैं अल्लाह की कोई गफलत हो सकती है? इतनी मर्तबा हमारे जबान से सुभान अल्लाह निकालता है, बेआयत हो सकता की जात। अगर तो समझो कि बेआयत जात हम जैसे कोई चुनेगी तो अयदार हो जाएगी, हमारा क्या होगा तो नहीं मालूम। बेड़ा से बेड़ा रहेंगे, लेकिन उसके नाम पर हर पा जाएगा कि हम जैसे को चुन लिया उसने, कि जिसको हम दिलरा सुभान अल्लाह कहते हैं, पाक और मुनज्जह है उसकी जात, किसी ऐसे कोई ऐब उसकी पास नहीं आ सकता। ऐब हमको चुन लेगा तो आ जाएगा। बख्शना अलग चीज है, चुनना अलग चीज होती है। बख्शना अलग चीज है, चुनना अलग चीज होती है। बख्शा है उसकी बे इंतहा है, मगर फकत इसलिए है कि इंसान जब भी उसकी तरफ आ जाए उसको अपना, उसने अपनी कोशिश, इंसान की कोशिश को कभी मामूली नहीं समझा, इंसान के गुनाह को भी कभी मामूली नहीं समझा, लेकिन बख्शने का वादा उसका है। लेकिन वो इंसान के जो बख्शाइश को बहाना बना ले, बख्शाइश को बहाना बना ले, उसने अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता हमेशा के लिए अपने लिए बंद कर लिया। बख्शाइश इसलिए है कि हमारी कमजोरियों की तरफ नजर रखकर, हमारी कमजोरियों पर बारे गुनाह रहने के नतीजे में हमारी अल्लाह की तरफ हरकत कुंज या सुन के रुक जाएगी, इस बुनियाद पर बख्शाइश का सिलसिला जारी रखा गया। हमारा हक नहीं है, उसका हक, लेकिन क्यों? ताकि उस बोझ के तहत गुनाह के जो दो चार कदम हम अल्लाह की तरफ चल सकेंगे, वो भी क्योंकि नहीं मुमकिन होगा अगर वो गुनाह का असर मुरतब हो जाए, तो इसलिए वो कहता है कि हम याकूब ने कसीर करते, कसीर चीजों को हम वक्त देते हैं। अब जब रूही सफर करने वाला जब अल्लाह के रास्ते पर आता है, तो ये दोनों चीजों की तरफ उसकी नजर पूरी होती है, एक अपनी कमजोरी की, दूसरे अपने पोटेंशियल की, अपनी अंदर की मौजूद कुव्वत की। तो एक तरफ अपनी कमजोरी से गुनाह करने की जो तौबा के जरिए थे, और उसी बुनियाद पर अल्लाह ताला फरमाता है कि तौबा बिना हुआ जो हिब्बुल मुतअक्खिरीन, हम तौबा करने वालों को और अपने आप को पाक रखने वालों को पसंद करते हैं। या खुद अपने आप को इतना हूँ ज्यादा तौबा कहता है, जो ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। ये एक पहलू है हमारा कि जो हमारी कमजोरी है उसका उसने ख्याल रख लिया है ना, जो अपने आप पर जुर्म करती है, हम तेरे तमाम गुनाह बख्श देंगे, इसी उन्वान से कि तुम में बोझ और बारे गुनाह उठाने की जो सलाहियत है वो बहुत ही मजबूत है। मैं जानता हूँ तौबा करो, पॉजिटिव तौबा वही करेगा जिसको पता है कि उसके पास अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए और कोई बहाना और कोई रुकावट नहीं है सिवाय तौबा। कुछ तौबा इसलिए होती है कि जिस तरीके से इंसान अपना हाथ जला ले उसके बाद तौबा करे, फिर नहीं जलाऊंगा। कभी तौबा इसलिए भी हो सकती है कि इंसान दुनिया के घर में गलत काम करे, उस दुनिया के गलत नतज के नतीजे में वो अल्लाह की तौबा करे। ये तौबा उसको दुनिया में गलत काम करने से रोक लेगी, अल्लाह का रास्ता नहीं दिखाई। गलत काम किया था तौबा किया, दुनिया भी नुकसान के लिए तौबा किया, अल्लाह बख्श दिया, वो दुनिया भी नुकसान से बच जाएगा। लेकिन अल्लाह के रास्ते पर जिन्होंने तौबा की है, इसमें आप पैगंबरों को, औसिया को, अइमा को देखेंगे ज्यादा, कि जिस चीज तवज्जो के साथ तौबा अजीब तरीके से हमको हैरान कर देती है। अरे हम कभी वैसी तौबा सोच नहीं सकते ये करते क्यों हैं? वो तौबा इसलिए है कि वहां से वहां तक जाना है और वो जाने के लिए जो सफाई की जरूरत है वो सफाई का काम अल्लाह करता है, रूची पीने का काम अल्लाह करता है। हमारे अंदर से तवज्जो के हटाने के नतीजे में जो हमसे हमें कमजोरी आती है वो कमजोरी को अल्लाह दूर करता है। इसलिए बार बार जो अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, बार बार जो अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हैं, अगर हमको ऐसे अखबार मिलते हैं रसूल अल्लाह को पुकारते पुकारते अपने पैर पुजा लेते हैं, ठीक है, कुरान की हायत आती है कि रसूल हमने तुम पर यह जिम्मेदारी इसलिए नहीं कि तुम अपने ऊपर मशक्कत बोलो, ठीक, क्यों, इसलिए कि रास्ता मालूम। या अगर हम देखते हैं कि हजरत अली जब कहते हैं कि इतना लंबा रास्ता और इतना कम दाद मेरे पास है, इतना कम तोशा मेरे पास है, तो ये तोशे की किल्लत की तरफ अली की नजर जाती है कि मेरे पास इस रास्ते को तय करने के लिए है क्या, मैं किस तरीके से इस रास्ते को तय कर पाऊंगा। जब ये महसूस होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वहां पर अल्लाह का हाथ इंसान को थाम लेता है, मैं सब कुछ हूं क्योंकि मुझे लाइट जरा सिक्का देती, ये अंबिया का औसिया का तरीका नहीं होता। मैं कुछ नहीं हूं, तू मुझे लेकर चल। जितनी ताकत बढ़ती जाएगी, जितनी तवज्जो अल्लाह की तरफ बढ़ती जाएगी, अपनी हकीकत उतनी ज्यादा अपने ऊपर बढ़ती जाएगी। हर कदम के लिए उसकी मदद की तलब करेंगे और जब कुछ होगा तो उसकी मदद को अपने लिए वाज़े तौर पर मुशाहिदा करेंगे, देख सकेंगे। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का जब सिलसिला जारी होने लगता है तो ये अलग किस्म की मखलूक हो जाती है जिसको परिश्रम को बता के अल्लाह कहता है कि तुम नहीं जानते वो तो मैं जानता हूं। ये कॉज एंड इफेक्ट को ईजाद करने के लिए हमको दुनिया में भेजा है, वरना मादी कॉज एंड इफेक्ट किसको नहीं आते। मादी कॉज एंड इफेक्ट, मेटीरियल कॉज एंड इफेक्ट किसको नहीं पता, छोटे बच्चे को भी पता है। एक मरतबा अगर गलती से आग में हाथ डालेगा दोबारा नहीं डालेगा, समझ जाता है। पहली मरतबा उसको जब नहीं होती है तो जाएगा, जरूर जाएगा, रोकने की भी कोशिश किया जाएगा। गर्म चीज को हाथ लगाने से रोकी है तो पूरी कोशिश के साथ लगाने की, एक मरतबा अंदाजा हो जाएगा उसके बाद देखिए जाएगा। तो ये चीज तो हमें आती ही है, फिर हमारे में वो खूबी ही क्या है कि जो फरिश्तों के सामने हमारे सज्जादे से बना कोई नहीं, जब तक कि हमें ये रास्ते समझ में ना आए। इसी बुनियाद पर हजरत अली का जो कौल है कि मुझसे इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं सवाल कर लेना, मैं आसमानों के रास्तों को बेहतर जानता हूं बनिस्बत दुनिया के रास्ते, वो इसी बुनियाद पर। तुम दुनिया का कॉजल इफेक्ट की बात करते हो, तुम आखिरत के कॉजल इफेक्ट की क्यों, आसमानों के कॉजल इफेक्ट की बात क्यों नहीं करते, रूह के कॉजल इफेक्ट की बात क्यों नहीं करते। रूह का भी तो कोई वो है, आज की दुनिया, आज की दुनिया हकीकतन कहूं उमूमी तौर पर कहूं तो बगैर रूह के होगी, ये बेरू दुनिया है। इस दुनिया में रुकना की चीज ही नहीं, इसके जितने भी किसाबात और किसाबात होते हैं वो पूरे के पूरे माती बुनियादों पर, चाहे वो मोमिन के हो या काफिर, चाहे वो मोमिन के हो या काफिर के, काफिर तो मोमिन हो नहीं सका, मोमिन जरूर काफिर हो गया। मैं उमूमी तौर पे कह रहा हूं, मैं समझ जो एक एक पद के ऊपर बात बिल्कुल नहीं है, एक एक पद के ऊपर बात बिल्कुल नहीं है, उमूमी तौर पर सोसाइटी के लेवल पर अगर देखा जाए तो मासी कैलकुलेशन सबको करना आता है, रूही कैलकुलेशन किसी को नहीं आता। उमूमी तौर पे कर, उमूमी तौर पे नतीजा क्या हो रहा है, जहां पर भी आप देखिए रूह से कम काम हो रहा है मासे से ज्यादा। जब मासा मासे से टकराएगा और फकत मासी ताकत की बात समझ आएगी तो बोलिए झगड़ा कम होगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। जहां पर बुराई को अच्छाई से दूर करो, हो सकता है कि तुम्हारा सब दुश्मन तुम्हारा अच्छा दोस्त बन जाए, जैसे कुरान कहता है, वो वाली कैफियत अगर ना हो तो अपने जल्दबाजी न करना, इसराफ न करना जो कुरान कहता है। ये सत्तो मारदगरी किसका नतीजा? अफसोस की बात यह कि मुसलमान दुनिया में जितनी सत्तो मारदगरी हो रही है उतनी पूरी दुनिया में बाकी देशों में नहीं हो रही। गलत है या सही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोमिन आगे काफिर हो गया। काफिर की ईमान की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले मोमिन के ईमान की बात तो कर ले। आज के दौर में खुदा की वहदानियत को मानने वाले मुख्तलिफ अकवाम में मौजूद है, क्योंकि मित्र खुदा को एक मानने वाले आपको मैं क्रिश्चियंस में बता सकता हूँ, मैं आपको यहूदियों में बता सकता हूँ, मैं आपको हिंदुओं में बता सकता हूँ कि खुदा को एक मानते हैं और उसको मादी नहीं समझते। हालिया समाज लीजिए जो भूतपरस्ती के खिलाफ है, ब्रह्म कुमारी को लीजिए जो भूतपरस्ती के खिलाफ है, ठीक। क्रिश्चियन में आपको जो है यूनिटेरियंस मिलेंगे जो दीन खुदा को नहीं मानते खुदा को मानते हैं, यहूदी दीन में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मुबाहिद हैं, इनकी तस्दीक कुरान भी करता है कि जहां पर कहता है कि अक्सर हम फासिकून, जहां पर यहूदियों की बात करता है, जहां पर ईसाइयों की बात करता है, जहां पर अहले किताब की बात करता है, वहां पर कहता है अक्सर हम फासिकून। उसका मतलब यह है कि कुछ फासिक नहीं है, उनकी भी तारीफ आपको सूरों में मिल जाएगी, इब्तदाई सूरों में मिल जाएगी, बकरा में और आले इमरान में। आज हम जो मुसलमान, चाहे वो किसी किस्म के मुसलमान, आज हमारा मकसद है क्या? दुनिया को क्या मिसाल बनाकर पेश करना चाहेंगे? दुनिया में ईमान का तो बोलबाला नहीं है, कुफ्र का बोलबाला है। अगर आज हम अपनी सोसाइटीज को उस बुनियाद पर के जो रूही असरात का नतीजा बनता है, यानी रूह को आगे बढ़ाने का नतीजा होता है, अगर आज हमारी सोसाइटी चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर उन बुनियादों पर ऑर्गेनाइज हो जाए, उन बुनियादों पर ऑर्गेनाइज हो जाए, तो आया हम दूसरी मखलूक नजर नहीं आएंगे? इंसान और आम जानवर के दरमियान बदन और रूह का फासला है। बदन दुनिया से निकलता हुई निकली हुई चीज का नाम है, रूह अल्लाह की तरफ से पूछी गई चीज का नाम है। ये और वो कितना फासला रखते हैं? एक ग्रुप इंसानों का बदनी ताकतों को बुनियाद बनाकर हरकत कर रहा है, दूसरा ग्रुप इलाही ताकत को, जो रूह की ताकत है, उसको बुनियाद बनाकर हरकत कर रहा है। तो ये दो ग्रुपों में कितना फासला हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? सच बोल ये है, आप मेरी पूर्ण शपथ ले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको ईमान पर रखा, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान पर हैं, उसका नमाज की नमाज पढ़ते हैं, उसका रोजा रखते हैं, सब कुछ। मगर आइए सोसाइटी के लेवल पर कुछ भी वही खाली दावे, उनके झूठे हमारे आधे सच्चे, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि ईमान जैसी चीज वजूद में आ ही नहीं रही है, और वो इसलिए नहीं आ रही है कि ईमान को हम अपने बाप की व्याधि समझ रखें। हमको ईमान टटोलने की जरूरत जो है किसी और जगह पर नजर नहीं आ रही है। कई लोग हैं जो फितरतन ईमान रखते हैं, रसूल के महफूज होने के वक्त भी खुद मक्के जैसी जगह पर जहां पर सिर्फ आम दीन था वहां पर हुनफा मौजूद थे, तारीख में उनके वजूद का इकरार है कि वो लोग जो बुतपरस्ती से किनारा कश थे और जो अपने आप को पाक और साफ रखते थे, ये इनको हुनफा कहा जाता था, हनीफ कहा जाता था, जहाँ पे अल्लाह कहता है कि दीन हनीफा की बात करता है, प्योर रिलीजन की बात करता है। जब ये लोग थे, आज के दौर में भी हर फॉर्म में हो जाएंगे। हो ले गया है कि हम अपने आप को पहले हिस्सों में तकसीम कर लिए और अब हम ये साबित करने पर तुले हैं कि हमारा फिरका ही सबसे ज्यादा आला और अच्छा है, हमारा फिरका ही सबसे ज्यादा आला और अच्छा है। ये आपको हमको किसने कहा था कि साबित करें? बताइए, ये जंग लड़के आओ किस अल्लाह ने हमको बताया है? मुसलमानों की बात करो, सवाल से जो करे थे जो आप बाद में कुछ समय जवाब, किस अल्लाह ने कहा है कि तुम अपने फिरके को सच साबित करके आ जाना दुनिया में, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, जंग लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, आबरू दीन की खत्म कर देंगे, ना वो ईमान पे बाकी रहेंगे ना हम ईमान पे बाकी रहेंगे, मगर साबित ये जरूर करेंगे हम अपन। फिर बात भी जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो दबा हो रही है, और फिर भी लड़ रहे
हैं। अरे जानवर नहीं करते ये काम, जानवर नहीं करते ये काम।
हो सकता है कि घोड़े के टुकड़े पर किसी टिपड़े पर जो है वो कुत्ते लड़ लें, मगर ऐसी चीज के ऊपर कि जो साया हो आप किस जानवर को लड़ते हुए देखते तो आप कितनी देर तक लड़ेगा, कुछ इसका साया पड़ाओ ठीक है, उनको वो हिलने के नतीजे में दरख्त के पत्ते होंगे उनको जानवर जैसा दिखा, एक कुत्ता उस पर टूट पड़ाओ फिर दूसरा कुत्ता टूट पड़ाओ, जिस हद तक उनको एहसास होगा कि उसमें कुछ चीज है तब तक ही लड़ेंगे, उसके बाद भी लड़ेंगे, दो सेकेंड तीन सेकेंड पांच सेकेंड उससे ज्यादा, क्यों कि अल्लाह उनको नाक ऐसी दिया है कि वो थोड़ी देर में पछा लेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं। इंसान को अल्लाह ने नाक के लिए ईमान दिया, अब ईमान ही नहीं है तो दो कुत्ते अपनी नाक की कुदरत की बुनियाद पर समझ लेंगे कि वो चीज लड़ने के काबिल नहीं, वो एक साया था जो जानवर मुहा दिख रहा था तो दो सेकंड से पांच सेकंड में लड़ाई खत्म हो गई। हमारा ईमान मस्जिदों बनाली पलभर में ईमान की हरारत वालों ने, फिर अपना पुराना पापी था बरसों में नमा दी, तो ये अगर हालत हो जाए नया नहीं है। हमारे इसके साथ ही अकबर का शेर है, अखबार बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोहता है, गुप्तार का वो गादी तो बना किरदार का गादी बन न सका। तो ये हालत हो रही है कि जिसको पता भी नहीं है, तो हम हकीकतन उन दो जानवरों मानित हो गए कि जिसकी नाक की सुनने की कुदरत चली गई हो, वो जानवर तो किसान ने तुझे कुत्ते की दिए, क्योंकि अल्लाह ने इंसान की तरह तस्वीर कुछ जगहों पर कुत्ते से किए, वो तो कुत्ते मानित है, छेड़ो तो भी भोगे न छेड़ो तो भी भोगे पूरा किया ठीक है, हजे से भी दिए समाचार हिमारी अकमिल अस्मारा, तो अल्लाह क्यों हमको कुत्ता या क्यों हमको खदा कहकर पुकार रहा या उनसे तस्बीह दे रहा, और शायद दोनों जानवरों की उसमें तौहीन भी हो रही है कि हम जो यहां पर पांच सेकंड के लिए नहीं लड़ते, ये इंसान तो जो है 50 साल तक लड़ सकता और 50 साल के बाद भी लड़ना इसलिए छोड़ देता है कि अब लड़ने की ताकत नहीं रही, मगर झगड़ा अपनी जगह पे बाकी है, क्योंकि मानसिक तौर पर इंसान को अगर आदत मानसी ही तौर पर दुनिया को समझने की हो जाए तो कुरान की वार्ड की तरफ गौर कीजिए, जहाँ कहता है कि जब इनको आमा हम अंधा महसूर करेंगे तो ये कहेंगे कि मालिक हमको क्यों तूने कयामत के दिन अंधा महसूर किया कि जबकि हम देखने वाले थे, ये देखने वालों की निशानी तो नहीं है, क्या देखते थे अल्लाह को मानते, अल्लाह कह रहा है कि जो देखना था तुमने नहीं देखा, जो इबरतें तुमको लेनी थी तुमने ले ली, ये सब करने के नतीजे में जो तुमने अपने झंडों को बुलंद करते हुए अपने आप को हक का दावेदार बनाया, उन झंडों की मुझे जरूरत नहीं, ना ही तुमको जरूरत, तुमको गुफ्तगू अमन अमान दूसरों में अल्लाह की तरफ से दी गई फितरत की तरफ बुलाने की फितरत, रसूल ने किसी तरह बुलाया इंसान मुश्रिकी को किसने बुलाया, क्योंकि रसूल को यकीन था कि इसमें वो फितरत है जो ईमान में तब्दील हो सकती है, इसलिए रसूल गम करते थे अल्लाह का बाकी नफ्सक अल्लाह यूमिनु बिहाज़ल हदीस असफा कुरान की आयत है, रसूल तुम अपने आप को मारे डाल रहे हो इस बात पर कि ये लोग ईमान नहीं लाते इस कुरान पर इस गुप्तार पर, तो क्यों रसूल गम कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज जो ईमान की शक्ल अख्तियार कर सकती है वो कोयला जो हीरा बन सकता है और बावजूद इतना करीब आने के वो कोयला अपने आप को हीरा नहीं बना रहा, तो उसको कि जिसको फर्क महसूस हो रहा हो या दिख रहा हो एक कोयले में और एक हीरे में वो कितना गर्जदा नहीं होगा, सामने लाखों हजारों कोयले पड़े हैं उनमें से कुछ हीरे बन रहे हैं और कुछ इनकार कर रहे हैं हीरा बनने से। और अल्लाह कह रहा है कि तुमको जबर करना नहीं है रसूल, लाइक रहा दीन एक आयत, दूसरी आयत है क्या रसूल तुम उन पर जबर करोगे नहीं मान ले आए। और एक आयत जहां अल्लाह ताला फरमाता है मोमिनीन से, कुछ मोमिनीन को इस बात से मायूस हो जाना चाहिए कि सबके सब ईमान ला गए, बावजूद उसके आपको कोशिश करनी है, हमको कोशिश करनी है कि फितरत में ईमान जिसके है। पहले तो सबसे पहले हमारे खुद को छोड़ के पूरी दुनिया के ईमान के लिए जो है हमने तराजू बना दी, अपने ईमान की तराजू वो गलती तोड़ के फेंक दिए। हम तो ईमान की तराजू की क्या जरूरत है, हम तो तोड़ने वाले, ये दूसरों को तोड़ने की आदत जो इंसान में हो गई है वो इंसान फिर यकीन रखता है कि कुछ गुनाह का। अरे अल्लाह को तराजू उठाने दो ना, अल्लाह की तराजू का तो यकीन है नहीं, अपनी तराजू को उठा लेते हैं। जिसको अल्लाह की तराजू का यकीन है, जिसको रूह के कॉज एंड इफेक्ट का यकीन है, वो बेचैन नहीं होगा। उसको पता है कि जो रूह के रास्ते पे नहीं चलेगा उसका क्या नहीं चलेगा, मुनाफा जरूर रहेगा लेकिन बेचैन नहीं होगा, क्योंकि हमको अल्लाह ने रिसालत देकर नहीं भेजा। रसूल जो कोशिश करते थे रसूल को रिसालत दी के पयाम पहुंचाओ जबर मत करो, तो रसूल अंदर से बेचैन होते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ लें। कुरान की खुद आया जब लाए तुम बात समावा की वर्ण कि अल्लाह की जात में शक के जो दुनिया और आसमान होगा पैदा करने वाला है, क्रिएटर है, ओरिजिनेटर। तो ये चीजों को हमें जब समझने की जरूरत है, ईमान हमको दूसरों में ढूंढना पड़ेगा। हम शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम ईसाई यहूदी इन बड़े ग्रुपिंग की बुनियाद पर सोसाइटी में काम नहीं करते। सोसाइटी में जहां पर भी ईमान नजर आ रहा हो, अच्छे फेल जो ईमान की बुनियाद पर अंजाम दिए जा सकते हैं, गुजरात के फतादात पर सबसे ज्यादा इंक्वायरी अगर की गई है तो किन्होंने क्या से देख लीजिए, जो रिपोर्ट फाइल की गई है कौन से ग्रुप से क्यों, उसमें कितने मुसलमान है और कितने हिंदू है देख लीजिए। जो लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आज गजा में आप बम्बारी देख रहे हैं, गजा में कितने बाहर से यूरोपीय ममालिक से आए हुए डॉक्टर मौजूद है इस वक्त, जबकि कहीं पर भी बम गिर सकता है, जबकि हमारे पास से लोग जाने को डरेंगे, या नहीं है? इतना आसानी से ईमान की तरह उठाकर खड़ा होना, लोगों को इधर और उधर तकसीम करने का काम करना, और दुनिया कुफ्र चाहता ये है कि हर ईमान वाला अपने हाथ में तराजू उठाए और उसके बाद जो झगड़ा शुरू होगा घर से शुरू होगा, पहले कि बाप को बेटे का ईमान नजर नहीं आएगा, माँ को बेटी का ईमान नजर नहीं आएगा, बेटी को माँ का ईमान नजर नहीं आएगा, भाई को भाई का ईमान नजर नहीं आएगा, पड़ोसी को पड़ोसी का ईमान नजर नहीं आएगा, क्योंकि सब क्या तराजू। और जब हम तराजू पकड़ेंगे तो बात हो गई है या नहीं, हम सीधा क्यों बोल गए तराजू, अपने गुनाह जो काफी छुटा गुनाह है जिसके ऊपर हमारे फरिश्तों ने अच्छी तरीके से जो है मोहर लगा दी है, वो बिल्कुल गुनाह नजर नहीं आएंगे, वो तो इत्तेफाक होंगे। और अगर गुनाह मान भी लेंगे तो अल्लाह बख्शने वाला क्यों है फिर, अगर गुनाह करने के बाद बख्शने वाला अगर है तो हमारा तो ये तसव्वुर है कि हम करने से पहले हमारा गुनाह बख्श दिया जाता है और दूसरे का गुनाह करने से पहले लिख दिया जाता है। हम भी रखिए नतीजा क्या होता है, ऐसी फिक्र का नतीजा क्या होता है, ईमान के दर्जा हासिल होते हैं या कुफ्र के अंधेरों में इंसान की रूह चली जाती। अगर ये अय्याम की कोई अहमियत है, और यकीनन मुसलमानों के पास अहमियत होनी चाहिए, और अल्लाह के वादे का हक है कि जो यकीन नन मुसलमान कबूल करता, तो हमको अपनी रविशों में अपने तरीकों में तब्दीलियां लानी, ईमान को हर जगह ढूंढना है अलामतों से, और वो अलामतें शायद हमें कम हो और दूसरों में ज्यादा हो, ये भी लेकर चलना है। अगर मैं सबसे आला मोमिन हूं समझ कर हरकत कर रहा हूं तो कोई हरकत कामयाब होने वाली नहीं है। रसूल ने भी जब हरकत की थी तो रसूल ने भी इसी बुनियाद पर हरकत नहीं की थी कि मैं सबसे आला हूं तुम लोग पहले जैसे हो जाओ, वो तो कुरान की आयत कह रही है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूल ने भेजनी मिसाल है, रसूल ने अपनी कोशिशों को ईमान की बुलंदियों की बुनियाद पर साबित नहीं किया है, अपने सजदों के जरिए से साबित किया, अपने झुकने के जरिए से साबित किया है, अपने अकड़ने के जरिए से साबित नहीं किया है। वो बेमार रहमती मिनल्ला मैं रसूल, ये तो अल्लाह की रहमत है तुम पर कि तुम उनसे नरमी से पेश आते। ये नरमी थी रसूल की, सख्ती से रसूल ने क्या किया बता दीजिए, जब अगर वैसा होगा तो कुरान क्यों कहता इन्ना अरसलना का रहमत लिल आलमीन, क्यों सख्ती कहां पर ना आई? जिसको ईमान के कॉज और इफेक्ट का अंदाजा नहीं है वो हर चीज ताकत के जरिए से हासिल करने की कोशिश करेगा। ईमान इस्लाम के इब्तदाई दौर में भी एक कैफियत दादी हुई थी जिसके नतायज अच्छे नहीं निकले, आज भी एक कैफियत दादी हो रही है जिसके नतायज अच्छे नहीं निकलने वाले। आप ताकत के जरिए से एक मुद्दत के लिए कंट्रोल पा सकते हैं। 12वीं 13वीं सदी में मंगोलों का हमला हुआ, तमाम बिलाद इस्लामी को पकड़ते चले गए, यूरोप इंडिया में भी आए, तीमूर लगे वो जो आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ठीक है, मुसलमान नहीं थे, नाम उनके साथ खान था, चंगेज था, चंगेज था, मुसलमान नहीं थे, दरिंदा था जो अपनी जगह के ऊपर अफान जी के नाम मारूफ हो गया है, लोग समझते कि मुसलमान नाम, उस वक्त जो लोग निकले थे मंगोलिया से ये मारते हुए जो निकले तो उधर जापान की तरफ और इधर की तरफ लेकर चले तो पूरा अफगानिस्तान मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा था, ईरान इराक शाम आगे बढ़ते बढ़ते यूरोप हुआ क्या, क्या बाकी रहा? फिक्र क्यों के नहीं थी? ब्रूट फोर्स इसको कहते हैं, फकत ताकत थी, ताकत कबा कर सकती है, इजाज नहीं कर सकती। इजाज के लिए एक इलाही उंसूर की जरूरत होती है। आज की दुनिया में जब कुफ्र इतना ज्यादा है तो इजाज कहां से होगी? जब इजाज नहीं होगी, नई दांत फूकी नहीं जाएगी, कोई मसीहा नहीं होगा, तो नतीजे में जहां पर जान नहीं आएगी वहां पर सनन होती है नहीं होती, इंसान के बदन से उसकी रूह निकल जाए, फौरन उसका बनना शुरू हो जाता है नहीं होता है या नहीं है? जो इंसान का वजन 60 साल 70 साल जितनी भी उसकी उम्र रही हो कभी खड़ा नहीं था, रूह के निकल जाने के नतीजे में इमीडिएटली सड़ना शुरू होता है नहीं होता है? आज का दौर जब काफिराना है मुशरिकाना है और जिसमें हमारा भी काफी हद तक हिस्सा है, तो उसके नतायज ये हो रहे हैं कि सड़न हो रही है दुनिया में और वो सड़न भी आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आता नजर आ रहे हैं। ये जो हमारे पास बार बार जो है न्यूज में आप जाकर आप खोलिए, या तो कहीं सबको बात करें, या कोई प्लेन को मारकर पैसे से निकाल दिया, या कोई रेप की बात हो क्या रहा है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है? इसको सड़न नहीं कहते तो क्या कहते? जिन उम्र के बच्चों को प्रोटेक्ट करना फर्ज बनता है इंसान का, जिसको बेचारों को कुछ भी नहीं पता कि जिनकी ख्वाहिशात क्या होती हैं, उनके साथ जो फेस अंजाम दिए जा रहे हैं और जाहिरन आखिर लोगों से ये अंजाम दिए जाते हैं, कोई पागल से दिए जाते हैं, तो अफसोस की बात है, 1 लाख में एक आदमी पागल, 10 लाख में एक आदमी पागल, गलती पागलपन की, लोगों को भी उतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, ये अच्छे खासे लोगों के साथ हो रहा है, इसको सड़क नहीं बोलेंगे। आज जब कुफर की अलामतें वादे से वादे तर होते जा रही हैं, अगर हमको ईमान के कॉज एंड इफेक्ट का अंदाजा है और हम फिर भी ईमान के कॉज एंड इफेक्ट की सबब और मुसबब की इल्लत और नतीजे की तरफ हरकत नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब आज जितनी दुनिया को ईमान की जरूरत है आज से पहले कभी नहीं थी। क्योंकि एक छोटी सी ट्रक पे रहे ट्रक का जो मिसाइल फायर किया गया है वो 10 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचे उड़ने वाले प्लेन को नीचे ला दिया, जो एक लॉरी से लॉन्च किया गया है, ऐसा प्लेन के जो तकरीबन 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर की रफ्तार से 33,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था, उसको आप एक ट्रक पे माउंट किए हुए रॉकेट से उड़ा दे रहे हैं, और कितने लोगों के पास ये चीजें आ जाएंगी? कौन सा प्लेन आसमान में जाकर वापस पहुंचने के काबिल रहेगा? टेक्नोलॉजी की बात बोल रहे हैं ना, तो चैन और सुकून जिस तरीके से शहरों में खत्म हो गया है, बैन अक्वामी तौर पर भी खत्म होना शुरू होगा या नहीं होगा? अगर ये आज के अलायम देख रहे हैं और तारीख की पहिया बड़ी तेजी से घूमने लगा, क्योंकि बीमारी के लिए वो बदनी हो एक लेवल तक एक स्पीड पर जाती है, मगर एक लेवल के बाद जब इंसान के रेजिस्टेंस को तोड़ देती है उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है वो अलग ही हो जाती है। ठीक है, जब तक के उसके बॉडी का रेजिस्टेंस होता है उसकी ग्रोथ का एक पैटर्न होता है तो मूवी तो होता है, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद तेजी से बीमारी का असर होता है और इंसान को भी टाइम दे रहा है। रूही तौर पर भी मफलूज इंसानियत को आज जितनी ईमान की ऑक्सीजन की जरूरत है और ईमान वालों को यह जानते हुए कि इस ऑक्सीजन की जरूरत है और ये ऑक्सीजन उनकी जात में पहले और उनके अतराफ में बाद में आएगा तो वो अपनी तरफ जितनी तवज्जो नहीं करेंगे अपनी जात में ईमान के उन अलायम को उन निशानियों को पैदा करने की कितनी नई कोशिश करेंगे कि जिसके नतीजे में और भी नतायज मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। जब अल्लाह ने कुफ्र के नतायज में दुनिया को सड़ा रहा हो तो जब रहमतुल आलमीन के जरिए से दुनिया को हयात दिया हो तुम सफाई को अल्लाह और उसके रसूल को जब वो तुम्हें बुलाता है उस चीज की तरफ तुम्हें हयात बचती है। कुरान क्या कहते कई और आए थे तो हयात की बात करते हैं रसूल के साथ से और हिदायत के साथ से। अरे क्या रसूल तुम उसको हिदायत दोगे जो मर चुका है यानी जिसकी ईमानी मौत वाकई हो चुकी है। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये अय्याम को मखसूस समझते हुए अगर हम अपने ईमान की तरफ मुतवज्जे हों और उसके नतीजे में जो आने वाले असरात है उसकी तरफ गौर करें तो जिस तरीके से कुफ्र का असर दिख रहा है उस तरीके से ईमान का असर भी दिखने लगेगा, पहले कम उसके बाद ज्यादा। जैसा दुनिया के बदन पर कुफ्र का रकबा हुआ है उसकी नजात ईमान के बढ़ने से होगी क्योंकि हम इस बात के कायल हैं, हम इस बात के कायल हैं कुरान की बुनियाद पर कि इस दुनिया के बारे अल्लाह के नेक बंदे होंगे। ठीक है, ये तो हमने कुरान किताबों में लिख दिया है, तौरात में लिख दिया है, कुरान की आयत है इन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून, इस दुनिया के बारे मेरे अच्छे साले बंदे होंगे। और ये कुरान का वादा नहीं है, ये तौरात का वादा है। तौरात का वादा है तो वादे तो पूरे पैसे कर चुका अल्लाह, हमको ये कहकर कहता है कि तुम पहली गुज़िश्ता किताबों में ईमान रखो और कुरान पर ईमान रखो। गुज़िश्ता कौमों के सिलसिले बार बार जो कुरान में सुनाता है दिखाता है वो इस ईमान से ही है कि देखो एक सिलसिला है जो रूह का अपनी जगह के ऊपर चलता है, वो रूह के सिलसिले जहाँ जहाँ पर कारफरमा होंगे उसके नतीजे निकलेंगे। अब तुम्हारी बारी आ गई, फिर कौम सुन और फलत कहाँ खतबत वाल कदब तुम जहाँ तक भी मुमकिन हो सके। अगर हम अपने ईमान की तरफ तवज्जो नहीं करें और ये अय्याम गुजर जाए और हमारे पास ये बात समझ में आज नहीं आए कि ईमान कर क्या सकता है, आपको ये जरूर पता है कि इस लाइट के होने से हम आप यहाँ पर बैठे हैं, इस टाइम पर पंखा भी चल रहा है, मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही है इसकी मदद से, तो एक लाइट के जरिए से हम ये सब काम कर सक रहे हैं, निस्बतन आराम के साथ बैठे हुए हैं। ईमान को भी इसी तरीके से अगर कुछ देर तक देखें और समझे और विजुलाइज करें तो यही नतीजा निकलेगा कि ईमान भी एक बस्ती में वही असर करता है जो ये रोशनी जगह पर करते हैं। इतना आसानी से समझ में नहीं आता है जितना कि रोशनी अंधेरा हो जाएगा आपको मेरे को समझ में आ जाएगा, लेकिन जहां पर लोग रोशनी से बिल्कुल ही आशना न हो आपके हमारे अगर कुछ ईमान की रोशनी को पूर्व से बदतर समझे, और जब अंबिया को और नेक लोगों को और अदालत तलब करने वालों को जो कुरान में और दूसरी किताबों में कहा गया है कि मारा गया है वो इसलिए किया गया है कि उनके ईमान को लोगों ने कुफ्र समझा, अपने कुफ्र को ईमान समझा। इंसान के अंदर अलग अलग किस्म की खूबी है, जब अपनी जात से मोहब्बत करने लगता है तो अपने जुल्म को इंसाफ समझता है और दूसरे के इंसाफ को जुल्म, उसको हर चीज से मुनज़्ज़ह और दूसरे को हर चीज का इल्जाम लगाने पर आमादा हो जाता है। तो नतीजा क्या होता है, तो ईमान का होना ये इस बात की दलील नहीं है कि लोग हमको फूलों से हार लाकर पहनाएंगे कि आपके ईमान का दर्जा ये था, अब माशाल्लाह ये हो गया है। ज्यादा इंसान ये है, ज्यादा इंसान ये है कि इल्जाम ये कहकर लगेगा कि ये दीन से दूर हो गए हैं, दीन के दुश्मन हो गए हैं, दीन के हकीकी रहनुमाओं के दुश्मन हो गए। अरे भाई ये क्यों हुआ? हमने तो ऐसा कोई काम अंजाम ही नहीं किया कि जो पेरिस में देखा जाए तो ये पता चले कि हम दीन के दुश्मनों में से हो गए। फिर ये कैसी बात? तो पता चला कि नहीं, जो चीज साबित शुदा हो गई है सोसाइटी में उसके खिलाफ बोलना कुफ्र है। जो चीज सोसाइटी में साबित हो गई है उसके खिलाफ बोलना कुफ्र है, और जो चीज साबित नहीं हुई है उसकी तरफ बुलाना कुफ्र है। तो जब रसूल आए उलू ला इलाहा इल्लल्लाह उपले होगा नारा बुलंद किया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और फलाह आ जाओ, तो रसूल ईमान वाले दिखे या कुफ्र? नूर की तरफ बुलाने वाले दिखे या दुलुमात की तरफ? इसकी तरफ। साबित शुदा चीजों की तरफ अगर आप दलील तलब करें तो आप हो जाते हैं बेईमान, जबकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि बगैर दलील के कोई चीज की पैरवी मत करो। तो ताकि दोबारा जिंदगी का सिलसिला दिया जा सके उन लोगों को जो मक्के और मक्के के अतराफ है, रसूल को महबूस किया गया, भेजा गया और रसूल ने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। आप इब्राहिम के बारे में देख लीजिए, इब्राहिम भी जाते हैं तो सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं ताकि लोगों को सोचने की आदत दिलाए। और जैसे इंसान का जहन सोचने लगता है बगैर किसी गलत को मद्देनजर रखते हुए, अल्लाह का रास्ता उसको वादे तौर पर नजर आए। इसलिए अनपढ़ मामूली जाहिल लोगों ने भी ईमान लाया उस वक्त जबकि उनको ईमान लाने से कोई चीज मिलने वाली नहीं थी, इफ्तार में कोई हलीम नहीं खिला रहा था, बावजूद उसके ईमान लाने के नतीजे में बदतरीन तरीकों से उन पर जुलूम किया जाता था, धूप में लिटाकर उनके पीठ पर गर्म पत्थर रख दिया जाता था। क्या थे वो लोग? बहुत पढ़े लिखे लोग। बिलाल क्या थे? गुलाम थे, सिया गुलाम थे, यानी सोसाइटी के सबसे नीचे वाले तबके को रिप्रेजेंट करने वाले थे। ईमान कैसे ले आए? और ऐसा ईमान ले आए कि जो है जितना टॉर्चर किया जा रहा है उतना उनका ईमान बढ़ता जा रहा है। ये कौन सा कॉजेटिव इफेक्ट नजर आया उनको? तो जो एक अनपढ़ जाहिल बिलाल उस दौर में समझ सकता था हमारे हुए उन पर पिता, आज हम उसको समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते? पहले प्रेशर से हम पहले बैकआउट हो जाते हैं, भाई ये कहां से लगा लो, और रोते उनके ऊपर है कि जिन्होंने हर किस्म की मुश्किल बर्दाश्त की। हम शहादत हजरत अली का सिलसिला इन अय्याम में मनाते हैं, वो चीज क्या थी कि जो कुछ लोगों को उनका इतना गिरविता बना दिया और कुछ लोगों को इतना बड़ा दुश्मन, वो क्या थी? कुछ जो उन पर जान देने को तैयार थे और कुछ जो उनकी जान लेने पर आमादा थे और ले लू। बस यही था कि जो उन पर जान देने को तैयार थे उन्होंने वो कॉज और इफेक्ट का, वो सबब और मुसब्बत का, वो इल्लत और नतीजे का रीजन और लिंक दे दिया था। जहां पर अल्लाह के रास्ते को समझने के बाद पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा, मोमिन अपनी जगह से नहीं होगा। तो वो लोग थे, नतीजा भी भुगता उन्होंने। बादत अली उनको चुन चुन कर मारा गया, बेहतरीन आजाद तरीन इबादत करने वाले नेक और शरीफ प्रति हजार, किसी को बख्शा नहीं गया। दुनिया के दस्तूर अलग होते हैं मगर दुनिया में अल्लाह के लिए जीने के दस्तूर अलग है। हमारे पर चॉइस, इम्मा काफिर हो व इम्मा शकूरा, कबूल करो उस रास्ते का जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है, नतीजे में तुम हर जगह अपने इंसान होने को ठुकराते जाओगे, रद्द करते जाओगे। आखिरी में इस हल तरीके की हालत हो जाएगी कि तुम एक जीवा बन जाओगे मुर्दा जिस्म के जिसकी खाल भी काबिल इस्तेमाला नहीं होगी। वर्जिला बिखे अगर तुमने वो रास्ता तय कर लिया मुश्किल ही सही और ईमानी रास्तों को समझ कर उस पर आगे बढ़ने लगे तो तुम्हें बदन के छोड़ने की काय हो जाएगी, बदन को पकड़ने की काय बाकी नहीं रहेगी। बदन एक चीज है जिसके जरिए से अल्लाह ने हमको उसका सफर तय करने का आला बनाया है, वसीला बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया। वो अपने आप में कोई चीज नहीं है। जब तक उस रास्ते में जो अल्लाह के तरफ जाने वाला है उसमें मदद और उम्मीद और मददगार हो रही है तब तक उसकी वैल्यू है, लेकिन जब अल्लाह तक पहुंच जाए उसका छूट जाना ही मुनासिब है। इसी बुनियाद पर चाहे वो किसी शहीद की हालत को देख लीजिए, उसने अपने जिस्म को अहमियत नहीं दी, चाहे उस दौर का हो या इस दौर, चाहे उस दौर का हो या इस दौर का, उसको बदन एक वसीला नजर आया, एक आला नजर आया, एक इंस्ट्रूमेंट नजर आया। बदन को महबरियत न देना, सेंट्रलिटी न देना, मरकजियत न देना, ये ईमान की पहली निशानी है। बदन हमेशा आला नजर आएगा। अब जब बदन उसके सहारे शुरू करेगा तो आप इतना ही देखेंगे कि उसको कितनी जरूरत है। हथौड़ी को आप कैसे मेंटेन करेंगे, उतना ही अच्छा मेंटेन करेंगे कि जहाँ पर कीला ठोकते वक्त आपको साथ दे, कोशिश करेंगे कि उसको संगा रखने पाए, आया नहीं है। और आपके दूसरे आलात को कीजिए, टेलीफोन आजकल हम यूज कर रहे हैं, आप यकीन उसको पानी से दूर रखेंगे क्योंकि पानी उसको लग जाएगा तो उसकी फंक्शन खराब हो जाएगा, डेड हो जाएगा। लेकिन आप उसको आला समझेंगे, उसकी जो हिफाजत है उसके मुताबिक आप उसकी हिफाजत करेंगे। बदन की भी जरूरत है हिफाजत, लातों को व्यक्ति को मिलन है होगा, तुम अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मिटा लो। यही है कि तुम्हारे आले को मामूली मत समझो, आला काम का है मगर आला है, आला काम का है मगर आला। तो जब आले वाली कैफियत हो जाएगी तो फिर कुछ बात ही नहीं रही, न इतराने की गुंजाइश बाकी रही, न अकड़ने की गुंजाइश बाकी रही, क्योंकि आले को लेके क्या कहते, नतीजे को जो आले से हासिल किया उस पर अकड़ने की भी बात आया नहीं है। हमको आदत ही हो गई है कि दुनिया तमाम में आपको बताया जा रहा है कि आले जो है ना ये बहुत अच्छे, क्योंकि आपको जाना है नहीं कहीं, आला बन गया मकसद, इंस्ट्रूमेंट हो गया मकसद। आप जितना इंस्ट्रूमेंट को चमका दो कोई ये नहीं पूछता है इंस्ट्रूमेंट का काम खाली चमकाना है, अगर चमकाना है तो 10 साल के बाद इसकी रौनक खत्म क्यों नहीं हो जाती है? जब बनना था तो 70-80-90 साल तक भी इसकी चमक थमा बाकी रहना है ना, 30 साल के बाद तो प्लास्टिक सर्जन के पास जाने की जरूरत होती है, हर चीज ढीली हो जाती है या नहीं है? तो ये कैसा आला के जिसकी पूजा की जा रही हो, जिसकी इबादत की जा रही हो, कि जो 18-19-20 साल के बाद झरना हल्के हल्के शुरू हो जाता है। साइंस के अंदर अगर आप जाकर देखें 18 साल की उम्र के बाद बदन में फ्रैक्शनल तौर पर निस्बी तौर पर कमी होना शुरू हो जाता है, बहुत ही हल्के हल्के 30 तक पहुंचेगी जरा स्पीड पकड़ ले, 40 तक पहुंचेंगे फिर जो हमने साथ में नहीं देखा था वो शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये बदन को अपने जाने का ऐलान करना 18-19 साल के बाद हल्के हल्के शुरू कर दिया। ठीक, 40 साल तक आने के बाद जो है स्पीड और बढ़ जाएगी, 60 तक पहुंचे अगर तो फांसी का चुषक तामस निषद तामस में दीवार, 60 साल के हो जाते हैं तो दीवार को टेका लेकर बैठना पड़ता है। हमारे जमाने में 40 और भी कुछ कम करूं तो ये आगे को जो अपनी जिंदगी का मकसद हम बना रखे और जितने आप यूज के चैनल देखिए ये पूरे आगे को देख रहे हैं, उसका मकसद उनको खुद नहीं मान और हम उनको देखने का खुश हो रहे हैं, क्या आना है अपने को, अपने भी को फायदा क्या होने वाला है उस आगे का, किसी को आला निवाला नजर आ रहा है अब तक कितने निवाले, कितने बदहत भी होने तक। और ये आदत ऐसी है कि जितने खाते जाएंगे भूख और बढ़ती जाएगी, दुनिया के निवाले ऐसे होते हैं कि जिससे पैर आदमी नहीं होता। तो ये जो हमारे को जो है आज इससे नाम जो बोलते हैं आई कैंडीज ऑफर की जा रही है आंखों की ठंडक के लिए, अपनी औलाद को देख के सुकून हासिल नहीं हो रहा है जो इस किस्म की उड़िया किस्म की चीजों को देखकर मिल रहा है। ये इंसान ईमान पर है या कुफर पर? कुरान कह रहा है कि दुआ करो कि मुझे मेरी अजवाज और जुर्रियत के जरिए आंखों की ठंडक मिले। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वा ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, आगे का मरल आगे, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और मुझे मुत्तकीन का इमाम बना दे। ये कहा अल्लाह के वादा कर रहे ईमान पे डटने का, आपके मुत्तकीन का इमाम बनूंगा, कटपट जाऊंगा, परेशानियों में डाल दे रहे अल्लाह, मियां आंखों की ठंडक की नजर तो भी ले लेता हूँ। हो रहा है नहीं। अल्लाह ने कहा बीवी बच्चों में आंखों की ठंडक, हमने कहा बहुत जगह है और भी है, और ईमान के ऊपर बाकी है। अब ऐसी हालत में हमको क्या मिलने वाला है दीन से? ऐसी हालत में हमको अल्लाह की इबादत से क्या मिलने वाला है? अल्लाह अगर चाहता है इबादत तो बिल्कुल उसके हो जाना। हमको दुआओं में भी जो मिलता है हम भी कमाल इंतकाल इमाम की जो दुआ है क्या मुझे कामिल तौर पर तेरी तरफ हर चीज से काट कर मुतवज्जे करा दे ताकि तेरा नूर मेरे दिल की आंख को रोशन कर सके। एक आंखा पर आंखें नजर आ रही, जिसको आंखें दो नजर आती है वो आंखों का सौदा करता है, जिसको दिल की आंख नजर आती है वो जिगर तू हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पर। तो दिल की आंख है, मानना है तो मान ले, नहीं मानना है तो ये दो आंखों के ऊपर काम चलाए। ये दो आंखों से बहुत कुफर मिलता है, ईमान नहीं मिलता, और दिल की आंख से ईमान मिलता है, कुफर की बात ही नहीं। वो आंख हमारी जब तक नहीं खुलेगी हम कुफर के दायरे में उसी हद तक गिरफ्तार रहेंगे जो जाहिर तौर पर हम इल्जाम परस्तों को लगाते हैं। फकत बस इतना ही होगा कि उनका बुद्ध जाहिर ही होगा, हमारा बुद्ध बातिनी होगा। बुद्ध वही है और बातिनी बुद्ध भी वही असर छोड़ता है जो जाहिर बुद्ध छोड़ता है, क्योंकि ये बुद्ध से तो छुटकारा मिलता ही नहीं, जहां जा लेते हैं उसको लेकर फिरते हैं। कोशिश की बात है अल्लाह जाना लजियन का उनको बोलना, वो लोग जो हमारे रास्तों में कोशिश करते हैं हम यकीन उनको अपने रास्ते दिखा देते हैं। हर मरहला मरहला का असर एक एक रास्ता बढ़ता है, लफ्ज़ जमा इस्तेमाल हुआ है तुगुल का मतलब ये है कि रास्तों पर रास्ते बनते जाते हैं। आप यहाँ से यहाँ जाएंगे एक रास्ता रहेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे होगा उसके आगे फिर रास्ते, मरहला मरहला होगा, उसी बुनियाद पर इंसान की ईमान की तरक्की होगी और इस बुनियाद पर इंसान की ईमान की तरक्की होगी जब ईमान वाले मिल जाएंगे, जब ईमान वाले मिल जाएंगे और ईमान के नतीजे जाहिर होने लगेंगे। पहले एक छोटे से दायरे में और उससे बढ़ते बढ़ते अल्लाह की मर्जी तक। किसने सोचा था कि रसूल के एक जगह पर के जो सबसे कठिन हुई जगह हो वादी गैर रसी सब, जिसको कुरान कह रहा है कि ऐसी वादी कि जिसमें विराट नहीं होती थी, वैसी जगह से आज भी हम मक्के को जाते हैं तो कटा हुआ नजर आता है सिवाय पहाड़ियों के और किलोमीटरों का किलोमीटर सिवाय कोई आबादी की गुंजाइश ही नहीं है। थोड़ा सा पानी क्यों ऐसा होता था वो यहाँ पर होता, किलोमीटर कोई आबादी नहीं। तो आज के जमाने में जब आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से एवरेज वहां पर हरकत करते हैं तो आपको दूर दिखता है, उस जमाने में जब ऊंटों से हरकत करते थे तो 8 से 10-12 किलोमीटर की रफ्तार से आपको हरकत करना पड़ता था, रात में हरकत करना मुश्किल हो जाता था। ये सब चीजों के साथ आप देखिए कि फासले कैसे थे, और उस दौर में एक जनरेशन एक नस्ल के फासले से ईमान पूरी दौर में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया, उस जमाने की नौ दुनिया कैसे फैला। कुछ तो हकीकत थी, तलवार से नहीं फैल सकता मंगोल, जैसा मैंने कहा कि मंगोलों ने काटते हुए पूरे एशिया को चले गए, क्या छोड़ा उन्होंने? एक जनरेशन में खुद मुसलमान हो गए, क्या छोड़ा उन्होंने? तबाही छोड़ी, दीन पर गलवा नहीं कर सके, ना ही कोई अपना दीन लाकर छोड़ सके। अगर ताकत के जरिए यही हासिल हो जाता तो अमेरिका जितना ताकतवर बन गया, एक ही दुनिया में सुपर पावर है, तो वो भी अपना दीन ला कर सकता था। इस हद तक जरूर किया है कि हमको पर हमारी ख्वाहिशात को उभारने में बड़ा होल लगा दिया, और जिसमें हम भी शरीक हो गए, इसलिए कि हमारी भी ख्वाहिशात उसी रास्ते पर है। लेकिन जिस दिन हम ये सोच ले कि हमारी ख्वाहिशात उन रास्तों पर नहीं है, आज के जमाने का कुकर हमको दिखा रहा है, तो हमारा रास्ता जुदा होगा, हमारा रास्ता खुदा वाला रास्ता होगा, और वो रास्ता हमारे लिए दुनिया में और आखिरत में एक अलग ही कायनात का सबब बनेगा। ये दुनिया वो दुनिया बाकी नहीं रहेगी, वो आखिरत अलग ही होगी। अगर इस दुनिया में गुम होकर आखिरत को हम तलाश कर रहे हैं तो हमको आखिरत मिलने वाली है। हम आखिरत के होकर अगर आखिरत को तलाश कर रहे हैं तो हमको आखिरत मिलने वाली है। मन अरादल आखरा वसाया, मन जितने इरादा काट किया क़यामत में मरने के बाद इस दुनिया में, जितने इरादा आखिरत का इस दुनिया में कर लिया, आखिरत को इस दुनिया में ढूंढने लगा, काम जरा मुश्किल है। साथ मिलकर चलने पर आसान हो जाता है, काम मुश्किल है, साथ मिलकर चलने पर आसान हो जाता है। और कुरान की जो छोटा सा सूरा है जो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्रिल इंसान लफी खुद यकीनन खतम तमाम इंसान फसाले और नुकसान में सिवाय नदी नाम वाले हाथ ईमान लाए और अच्छे अमाल अंजाम दें, बतवासों की हकी बतवासों में सब जो एक दूसरे को वसीयत करेंगे हकी और सब्र की, ये मिलजुल के अल्लाह के रास्ते पर ईमान रखकर अच्छे आमाल करने वाली जो कैफियत है ये कसौटी है इंसान के ईमान को बाकी रखने के लिए। और आपस में अगर मिलेंगे नहीं तो ईमान बाकी नहीं रहेगा, अकेले को वह आसानी शैतान शिकार कर लेता है, लेकिन जब मिलजुल के कोई काम करता है तो शैतान उसे आसानी से पकड़ नहीं सकता। मोमिनीन आपस में अमर बिल मारूफ नहीं है दलबुनकर करते हुए एक एक कदम करते हुए आगे बढ़े और दूसरी कौमों में भी ईमान को पहचानने की कोशिश करें, दूसरी कौमों को रद्द नहीं करते हैं ये तो वो है, ये कोई वो नहीं होता, सब इंसान अल्लाह के बंदे हैं और सब में ईमान की रोशनी है, उनमें अल्लाह की फितरत है। उस फितरत को बगैर हमारे तरीकों को अफजल समझ के उनके तरीकों को गिरा हुआ समझ के अगर हम अप्रोच करेंगे तो हम साठ और इला कलिमत सवा हो जाएंगे। आ जाओ एक कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे में कॉमन है, सवा है कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी को उसका शरीर नहीं ठहराएंगे। ये अगर बुनियादों पर हरकत करने को तैयार हैं और लोगों में फिरकों की बुनियाद पर नहीं मोहब्बतों की बुनियाद पर और अल्लाह के रास्ते को आगे बढ़ाने की बुनियाद पर अगर आगे बढ़े, न फकत ये सोचते हुए कि हम शिया है वो सुन्नी है, मुसलमान है हम शिया है, वो हिंदू है मुसलमान है वो क्रिश्चियन है, मुसलमान है वो हिंदू है वो क्रिश्चियन है, ये सब झगड़ों से अपने आप को बुलंद करके इंसानियत की तलाश और उन उसूलों को जो ईमान और अच्छे अमल वाला है उसकी तरफ अगर हम गौर करें तो शायद ये दुनिया में पहली हरकत हयात की तरफ आएगी। वरना ये दुनिया आज के दौर में कम से कम मौत की तरफ तेजी से बढ़ रही है, मगर उसकी मर्जी वो किस तरीके से इसको दोबारा हयात की तरफ लाएगा। लेकिन हमको अगर अपना रोल अंजाम देना है तो हम सब मिलकर जहाँ तक भी हो सके अपने ईमान के रास्तों को समझे, अपने रूह के रास्तों को समझे और बदन को वसीला समझते हुए, आला समझते हुए, इंस्ट्रूमेंट समझते हुए उसको काम में लाए और बगैर गुरूर और तकब्बुर के इस रास्ते को आगे बढ़ाए। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि इस रास्ते पर हमको कामयाबी अदा फरमाए और इंशाअल्लाह दुनिया को उस चीज की तरफ ले जाए कि इंशाअल्लाह जो दुनिया उस तरफ पहुंचेगी इन्न ये वादा पूरा होगा और यकीनन उसको पूरा करने वाले ईमान वाले होंगे और अच्छे अमल करने वाले होंगे। अल्लाह हमको उनमें शामिल करे और हमारा सबका खातिमा खैर और ईमान पर करे।